آپ ہیں ایس بی ایس ہندی کے ساتھ اور خبروں کے لیے جائیں sbs.com.au/hindi پر۔ मित्रों, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस या नेशनल यूनिटी डे। तो इसकी शुरुआत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014 में की गई। तो ये दिन क्यों मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है, इस सिलसिले में हम चर्चा कर रहे हैं दो स्कॉलर्स के साथ, ताकि हमें बेहतर और अच्छी जानकारी मिल सके इस दिवस के बारे में। तो मैं आपकी भेंट करवाने जा रही हूँ प्रोफेसर बिमल पटेल के साथ और हिंडोल सेन गुप्ता के साथ। प्रोफेसर पटेल वाइस चांसलर हैं राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी गांधीनगर में और लॉ कमीशन के सदस्य भी हैं। और हिंडोल सेन गुप्ता साहब एक इतिहासकार हैं, पत्रकार तो हैं ही, 9 पुस्तकें लिखी हैं और फॉर्च्यून इंडिया के एडिटर एट लार्ज भी हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल पर एक पुस्तक भी लिखी है। तो नमस्कार पटेल साहब और नमस्कार हिंडोल सेन गुप्ता।
नमस्कार। नमस्ते
जी। हमें बड़ी खुशी हो रही है कि SBS रेडियो के हिंदी कार्यक्रम में आप हमारे साथ आज यहाँ पर मौजूद हैं। तो प्रोफेसर पटेल, मैं आपसे पूछूं कि एक्चुअली नेशनल यूनिटी डे या राष्ट्रीय एकता दिवस ये क्या है और क्यों मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है?
राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया है 31 अक्टूबर को। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के 560 से ज्यादा प्रिंसिपली स्टेट्स जो थे
जी,
तो उनको सभी को इकट्ठा किया और भारत जो 3 भारत कहलाए जाते थे उसको एक भारत बनाया
जी।
जैसे आपको मालूम है कि कॉलोनियल ब्रिटिश कॉलोनी ऑफ इंडिया, नंबर ऑफ प्रिंसिपल स्टेट्स एंड ऑल्सो फ्रेंच एंड पोर्टुगीज कॉलोनीज, वो भी अभी तक वो इंडिपेंडेंट ही थी। तो ये जो 3 हिस्सों में भारत बटा हुआ था 1947 में
जी,
तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 507 से ज्यादा प्रिंसिपली स्टेट को इकट्ठा करके आज जो भारत एक सार्वभौमत्व और एक है उसका उन्होंने गठन किया
जी, बिल्कुल। तो
उसके लिए राष्ट्रीय एकता इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये राष्ट्रीय एकता में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत ही था
जी। तो हिंडोल साहब, मैं आपसे पूछूं, आपने तो पुस्तक भी लिखी है वल्लभ भाई पटेल साहब पर, सरदार साहब पर, कि ये काम करने के लिए 560 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स को एक साथ लाने में एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम हुआ होगा, तो सरदार पटेल की सबसे बड़ी ताकत क्या थी हिंडोल?
आपने जो कहा, आपने जो शब्द इस्तेमाल किया उसी से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। आपने कहा कि ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था। हम ठीक से शायद समझते नहीं है आज कितना चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि वो सरदार पटेल के शारीरिक जो स्थिति थी जब ये वो कर रहे थे, पूरे देश में जा रहे थे, जगह जगह लोगों से बात कर रहे थे, प्रिंसिपल स्टेट के जो राजा महाराजा नवाब वगैरह थे उनको वो कन्विंस कर रहे थे। इस दौरान और इन दौरान उनका शरीर एकदम टूट गया था, वो पहले से ही थोड़े से बीमार थे और वो उन दिनों उनका शरीर और भी टूट गया था।
अच्छा।
और ये सिर्फ उनके मृत्यु के कुछ ही 1-2 साल पहले की ही बात है। और जैसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, ही वाज अ डाइंग मैन, उनको शायद दिखाई भी दे रहा था कि मृत्यु आगे आ रही है, पर ये होते हुए भी और इस मृत्यु को उन्हें नकारते हुए उन्होंने ये काम किया। और जैसे किसी ने लिखा है, मैंने किताब में भी मेंशन किया है, अगर पटेल साहब नहीं होते तो भारत एक नहीं होता, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोई ये कर सकता था तो सिर्फ पटेल साहब ही थे उस दौरान जो ये कर सकते थे। और उनका कैसे वो कर रहे थे, देखिए पटेल साहब को मैंने लिखा है मेरे पुस्तक में भी, कांग्रेस पार्टी में तीन लोग थे जो पार्टी के एकदम लीडरशिप जिसको हम कहते हैं, वो थे जब हमें आजादी मिली, गांधी, नेहरू और पटेल। और उनमें पटेल एकमात्र थे जो बहुत ही उनको उनको जमीनी समझ बहुत अच्छी तरह से आती थी, और वो जमीनी समझ से उनको पता था कि ये आजादी झूठी हो जाएगी जब तक भारत एक नहीं होता। एक होने का जो क्षण है, जो दृढ़ता है, वो पटेल साहब में बहुत पहले से थी, और इसीलिए उनका शरीर टूट गया था पर उनका मनोबल नहीं टूटा था।
बहुत सुंदर आपने बात बताई। तो प्रोफेसर पटेल, आपसे पूछूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल एक बहुत ही एस्ट्यूट पॉलिटिशियन तो थे, वकील भी थे, वो एक एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, प्रशासनिक भी थे, तो उनके जीवन के अन्य पहलुओं के बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे हमें?
बिल्कुल। जैसे मैं सोचता हूँ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल एक बहुत ही उम्दा स्टेट्समैन थे और बहुत ही बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। जब एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करते हैं तो 1920 के जो दशक था उसमें वो अहमदाबाद म्यूनिसिपैलिटी में बहुत ही बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन का काम किया था। उन्होंने एक क्लीनलीनेस से लेके पूरी अहमदाबाद की जो म्यूनिसिपैलिटी है उसको सबसे बड़ा एक वैभवी दर्शन करवाया था। साथों साथ उन्होंने उसी समय के आसपास जो भारत में अंदर कोऑपरेटिव जो मूवमेंट है जिसका फल हमें आज मिल रहा है, तो कोऑपरेटिव फार्मिंग और पर्टिकुलरली जो त्रिभुवनदास पटेल एक और बढ़िया कोऑपरेटिव मूवमेंट के लीडर थे, उनको उन्होंने मार्गदर्शन देके भारत का जो व्हाइट रिवॉल्यूशन है
जी।
उसका उन्होंने बीज बोया था और दोनों खेत और व्हाइट रिवॉल्यूशन में उनका बहुत ही बड़ा सहयोग था।
अच्छा, तो यूं कह सकते हैं कि अमूल के भी जो जड़ें थी वो इन्होंने ही शुरू की शायद।
उनके मार्गदर्शन के साथ त्रिभुवनदास पटेल और उसके बाद हम डॉक्टर वर्गीस कुरियन ज्वाइन हुए। तो ये जो बीच थे वो जो कोऑपरेटिव प्लानिंग कोऑपरेटिव मूवमेंट ये जो बीच थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोए थे। आपको मालूम होगा कि जब उन्होंने बारडोली का सत्याग्रह शुरू किया था तब उनको पता चला कि अंग्रेज सरकार
जी
हमारे किसानों को कैसे अच्छे दाम नहीं देती थी, कैसे उनका शोषण किया जाता था। उसी टाइम उनको लगा कि अगर खेत मजदूर और किसान अपना भविष्य अपने हाथ में लेगा और जबकि भारत एक किसान प्रधान देश है तो उसके हाथ में आ जाएगा अपना भविष्य, तो वो अपना तो भविष्य सुदृढ़ करेगा साथ साथ पूरे देश का भी भविष्य सुदृढ़ करेगा। तो ये जो बहुत ही दूरंदेशी उनकी नीति थी, दूरंदेशी उनका जो विजन था वो हमको 1920 से देखने को मिला और उसके परिणाम आज 2020 100 साल के बाद भी हम लोग बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल। और हिंडोल, मैं आपसे पूछूं कि 562 स्टेट्स, 560 से भी ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स थे, तो सबसे मुश्किल किन स्टेट्स को शामिल करना हुआ, कश्मीर या हैदराबाद, आप बताइए।
पर्टिकुलर प्रॉब्लम हुआ सरदार पटेल को और उन्होंने वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया भी अपने तरीके से। एक तो था जूनागढ़, दूसरा था हैदराबाद और तीसरा था कश्मीर। जब बाकी सारे स्टेट्स इकट्ठे हो गए थे तो फेमस भी सरदार पटेल से कहा गया था कि एक तो आपका जो टोकरी है सेबों का उसमें एक दो फल अभी भी बाकी है।
अच्छा।
और वो फल थे कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। इनमें सबसे ज्यादा उनको कठिनाई आई। कश्मीर के बारे में तो सबको पता ही है, कश्मीर का कश्मीर में पाकिस्तान के साथ काफी प्रॉब्लम थे, उन कश्मीर में उन दिनों इन्वेजन हो गया था। हैदराबाद में निजाम के अपने खुद के कुछ प्रॉब्लम थे, वहां पे वो रजा करके अत्याचार भी चल रहा था। जूनागढ़ में जो नवाब थे वो कोशिश कर रहे थे जिना साहब के साथ की अलग से वो बच जाए। तो ये सारा बहुत ही पेचीदा मामला था और ये सारा मामला सिर्फ पटेल साहब अपने खुद के यूनिक स्टाइल से, जैसे हम कहते हैं, उनका ऐसा है कि एक दृढ़ता था, एक एक फंड था, एक एक उनका शक्ति था, जिससे उन्होंने ये सारे बहुत ही पेचीदा सवाल को एक एक करके उन्होंने सुलझाया।
जी, और ये तो हम सब जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है 182 मीटर्स का, तो उसके बारे में हिंडोल आप क्या कहेंगे?
देखिए, सरदार पटेल की जो डॉटर थे, जो उनकी बेटी थी मणिबेन पटेल, उन्होंने एक बार सरदार पटेल जी से कहा, पूछा कि सरदार साहब, गांधी जी तो अपने हिसाब से वो जो देखते हैं पूरे ये जो अब आजादी की जो लड़ाई है वो जैसे देखते हैं, वो अपने भाषा में लिखते हैं, पंडित नेहरू भी अपने भाषा में लिखते हैं, तो आप क्यों नहीं लिखते? सरदार साहब ने कहा था, देखिए कुछ लोग होते हैं जो इतिहास लिखते हैं और कुछ लोग होते हैं जो इतिहास बनाते हैं, तो ये बहुत ही खूबसूरत बात है। तो अगर उन्होंने नहीं लिखा और उन्होंने हमें, उनको लगा नहीं कि हम उन्हें कभी भूल जाएंगे और उनको अलग से लिखना पड़ेगा, तो इसीलिए मुझे लगता है और भी आज हमें इसी सोच को लेके चलना है और हम जो कैसे उन्होंने जो नहीं किया अपने लिए, हमें उनके लिए करना चाहिए, स्पेशली बिकॉज क्योंकि उन्होंने कभी अपने आप को सामने नहीं रखा, उन्होंने कभी अपना प्रचार नहीं किया, और क्योंकि उन्होंने कभी अपना प्रचार नहीं किया, हमारा हक बनता है और हमारा दायित्व बनता है कि हम उनकी कहानी को बताएं, लोगों को आगे वाली पीढ़ियों को समझाएं कि आज अगर जो हम देश देखते हैं, जिसको हम इंडिया कहते हैं, भारत कहते हैं, उसका मैप, उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा नहीं होता अगर सरदार साहब नहीं होते।
वाह, बहुत सुंदर आपने जवाब दिया है। और अंत में प्रोफेसर बिमल पटेल, आपसे पूछूं कि कोविड का, कोरोना वायरस की महामारी है, तो इस साल नेशनल यूनिटी डे या राष्ट्रीय एकता दिवस किस तरह मनाया जाएगा भारत में?
राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाएगा, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग और ये जो पब्लिक सेंस ऑफ डिसिप्लिन जो है तो आएगी, और उसमें भी मैं सरदार पटेल का एक उदाहरण देना चाहूंगा।
जी,
कि जब उस जमाने में प्लेग का वो व्यापक फैल गया था
जी,
उस टाइम सरदार पटेल ने जिस तरह से पूरा हैंडल किया प्लेग का, वो जो डिसीज स्प्रेड हो चुका था,
बिल्कुल,
तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं 100 साल बाद भी हम अगर सरदार पटेल का जो एक संयम था, शिस्त था, पब्लिक के प्रति हमारी जो इंडिविजुअल की जिम्मेवारी है, तो ये जब वो निभाएंगे, तो ये जो कोरोना की महामारी अभी हो रही है, उसमें सरदार पटेल को एक सही मायने में हम लोग उनको होमेज पे करेंगे, और साथ ही साथ ये जो महामारी अभी फैल रही है, तो हम अच्छी तरह से उसको जीत सकेंगे। तो मेरी तो सबसे गुजारिश यही है, हमारे डे टू डे लाइफ में, नेशनल लाइफ में सरदार पटेल का बहुत योगदान रहा है, और हर एक पहलू में सरदार पटेल की ऐसी बातें हो रही है, तो आज हम जैसी महामारी को जी रहे, तो क्यों ना हम सरदार पटेल के वो जो उदाहरण को याद करके वही शिस्त और संयम से राष्ट्रीय एकता दिवस सेलिब्रेट करें, वही मेरी एक नम्र गुजारिश रहेगी।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप दोनों साहब का, आप लोगों ने बड़ी अच्छी जानकारी दी है, और उम्मीद है कि भारत हमेशा तरक्की के पथ पर रहेगा और एकता बनी रहेगी। थैंक यू सो मच।
थैंक यू।
और कहानियाँ सुनना चाहते हैं? एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई या फिर जहाँ आप पॉडकास्ट सुनते हैं वहाँ हम हैं।